તારીખ 15/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 499 અને 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
134 જીવમાં ઢીલાપણાની ઢીલાપણાથી જ ઘણું કરી મને આ પ્રતિબંધ છે એમ ફરી ફરી નિશ્ચય કરીને જેટલો બને તેટલો વ્યવસાય સંક્ષેપ કરતા જે પ્રવૃત્તિ થાય તો બોધનું ફળ થવું સંભવે છે. એ બહુ સારું માર્ગદર્શન છે. ખાસ કરીને જે વ્યવસાયમાં હોય એના માટે વાત ક્યાં છે કે જીસ વ્યવસાય કરને કે કારણ છે જીવ કો ભાવ નિંદ્રા કા ઘટના કમ હોના ન હો યહ વ્યવસાય કોઈ પ્રારબ્ધ યોગ કે કારણ છે કરના પડતા હો તો બાર બાર પીછે હટ કરકે બડા ભયંકર હિંસા વાળા દુષ્ટ કાર્ય ની મેં કર રહા હું એસા બાર બાર વિચાર કરકે ઓર જીવ મે શિથિલપણા કે કારણ સે હી જીવ કા શિથિલપણા કે કારણ સે યહ મુજે બડા પ્રતિબંધ હૈ એસા બાર બાર નિશ્ચય કરકે જીતના હો સકે ઉતના વ્યવસાય કો સંક્ષેપ કરકે પ્રવર્તન કરના ચાહીએ તો બોધ કા ફળ હોના સંભવિત હૈ. ક્યા કહેના ચાહતે હૈ? ભાવ નિંદ્રા માને દર્શન મોહ. દર્શન મોહ કો ભાવ નિંદ્રા ઇસલિયે કહેતે હૈ કે જૈસે નિંદ્રા મેં સોયે ઓ સોયા હુઆ મનુષ્ય હૈ ઉનકો પતા નહીં કે મેં કહાં સોયા હું. મેં નીચે જમીન પર સોયા હું યા ગદ્દે પે સોયા હું યા કોઈ પલંગ સેજ પે સોયા હું. મેં કહાં હું, મેં કહાં નહીં હું, કુછ પતા નહીં હૈ ઉસકો. પર મુજે ક્યા હો રહા હૈ ઉસકા ભી ઉસકો પતા નહીં. મુજે નિંદ આ રહી હૈ વો ભી ઉસકો પતા નહીં હૈ. વૈસે દર્શન મોહ મેં જીવ હોતા હૈ તો ઉનકો ખુદ કો પતા નહીં હૈ કે મેરા અહિત હો રહા હૈ યા મેરા હિત હો રહા હૈ. મુજે નુકસાન હો રહા હૈ, મુજે લાભ હો રહા હૈ, ઉસકો પતા નહીં હૈ. મેં દુઃખ કે રાસ્તે પે આગે બઢ રહા હું, સુખ કે રાસ્તે પે આગે બઢ રહા હું, વો ભી ઉસકો પતા નહીં હૈ. મુજે શાંતિ મિલેગી યા નહીં મિલેગી ઉસકા ભી ઉનકો પતા નહીં હૈ. और अपने लाभ नुकसान के विषय में वो बिल्कुल अनजाना रहता है, इसलिए उसको भाव निंद्रा कहते हैं. और वास्तविक निंद्रा को द्रव्य निंद्रा कहते हैं. तो ये उपमा है, दर्शन मोह को निंद्रा की उपमा है, इसलिए उसको भाव निंद्रा कहते हैं. तो जिस व्यवसाय के कारण से दर्शन हो कम न होता हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा विचार करने वाला जीव दर्शन मोह को घटाना चाहता है, कम करना चाहता है. उसका ध्यान गया है. क्या विशिष्टता है इसमें के चारित्र मोह के परिणाम पर तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन दर्शन मोह के परिणाम पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। चारित्र मोह के जो परिणाम होते हैं, दोष होते हैं, वो स्थूल दोष हैं। जैसे जीव पाप करता है, पाप के परिणाम होते हैं, ये सब चारित्र मोह के बहुभाग जो है वो चारित्र मोह के परिणाम है। क्रोध, मान, माया, लोभ या झूठ, चोरी, झूठ चोरी वो मायाचार का ही पिटा भेद है। तो ये चार जो कषाय है उसका पिटा भेद में अनेक प्रकार के जो परिणाम होते हैं वो समझ में आता है, अपने को भी समझ में आता है, दूसरे को भी समझ में आता है। दर्शन मोह के परिणाम सूक्ष्म है और ऐसे परिणाम न खुद को समझ में आता है न दूसरे को भी समझ में आता है। तो यहां ऐसा जीव लिया है कि जिसका ध्यान गया है दर्शन मोह को कम करने का, तो मुझे दर्शन मोह का जो दोष है वो कम होना चाहिए। और जो व्यवसाय है, धंधा, व्यापार, वो चाहे प्रामाणिकता से हो, सद्व्यवहार से हो, फिर भी वो पाप के ही परिणाम है। प्रामाणिकता से करे तो भी वो पुण्य के परिणाम नहीं है, पाप के ही परिणाम है। अप्रामाणिकता से करे वो तो पाप को है, पाप का है ही, उसमें तो चर्चा करने का भी कोई अवकाश नहीं है। लेकिन प्रामाणिकता से करे, नौकरी धंधा जो भी करे, वो दोनों व्यवसाय में गिनते हैं, वो पाप के ही परिणाम है। अब कहते हैं कि कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं कि जो चारित्र मोह के उपरांत दर्शन मोह का भी नुकसान करता हो, ऐसा व्यवसाय हो और उस पर जीव का ध्यान गया हो कि मुझे इस प्रकार का व्यवसाय करना नहीं चाहिए या मेरा दर्शन मोह घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ जाएगा, फिर भी प्रारब्ध योग से मैंने पूर्व कर्म से ये व्यवसाय तो उनका चालू है, ध्यान बाद में गया और पहले से व्यवसाय तो वो चालू है, अब क्या करें, तो उनको क्या करना चाहिए, कब वो व्यवसाय से वो छुट्टा हो सके या संक्षेप कर सके, कम कर सके। कि एक तो उसका ध्यान गया हो कि मुझे दर्शन मोह बढ़ाने का कारण है, उनको बार बार पीछे हटकर मैंने उस व्यवसाय के परिणाम में जो रस है उस पर धक्का लगना चाहिए। किस प्रकार से, कि मैं भयंकर हिंसा वाला दुष्ट कार्य कर रहा हूं। किसकी हिंसा होती है, कि अपने स्वरूप की हिंसा होती है। जब दर्शन मोह बढ़ता है तो आत्मा के ज्ञान और शांति आनंद जो है, जो आत्मा के प्राण है, उसकी हिंसा होती है, उसका सच्चा ज्ञान आनंद शांति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो मैं बहुत बड़ा नुकसान अपने आप को कर रहा हूं, मेरा आत्मा का ही मैं खून कर रहा हूं, ऐसे उनके भाव चलने चाहिए और बार बार उसका विचार उसको आना चाहिए। और मेरा ये व्यवसाय नहीं छूटता है, जीव में शिथिल पड़ा है इसलिए नहीं छूटता है, मेरा शिथिल पड़ा के कारण से व्यवसाय है इसका मुझे प्रतिबंध है, मैंने मुझको मोह है इसका, मुझे पकड़ है इसके और मैं छोड़ नहीं सकता हूं, ये मेरा दोष है, ये मेरा प्रतिबंध है, मैं खुद बंधता हूं अपने आप स्वतंत्रता से, ऐसा बार बार निश्चय करना चाहिए। और सिर्फ निश्चय ही नहीं करना चाहिए, उनको उसका आचरण में व्यवसाय को पहले संक्षेप करना चाहिए, बाद में अगर सीधा नहीं छूटता हो, सीधा त्याग नहीं कर सकता हो, तो उसको उसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए और उसको कम करते करते उसको छोड़ देना चाहिए। तो जो उपदेश है इसका फल होना संभवित है, अगर ऐसा करता है तो। ये बात एक व्यवसाय के दृष्टांत से कृपालु देव ने किया है, हम इस पर थोड़ा और विचार करें कि कोई भी बात ऐसी हो हमारे परिणमन में कि जिसके कारण से दर्शन वो वर्धमान होता हो या कम नहीं होता हो, ऐसे कोई भी प्रकार के परिणाम हो, उस प्रकार के परिणाम को मिटाने के लिए ये भयंकर दुष्ट कार्य मैं कर रहा हूं, इसका विचार, इस प्रकार का विचार आना चाहिए और ये प्रवृत्ति को संक्षेप कर लेना, करने का प्रयास होना चाहिए। तो ऐसे जो क्रोधमान माया लोग हैं उसमें है तो ये चारित्र मोह के कषाय के परिणाम, लेकिन माया का संबंध दर्शन मोह के साथ ज्यादा है। मायाचार में झूठ बोलना होता है, वक्रता के परिणाम होते हैं, असरलता के परिणाम होते हैं, जिद के परिणाम होते हैं, ऐसे हट के परिणाम होते हैं, ऐसे ऐसे जो परिणाम होते हैं वो दर्शन मोह के साथ सीधा कनेक्शन रखता है। चारित्र मोह के परिणाम होने के बावजूद भी उसका संबंध दर्शन मोह के साथ ज्यादा है। तो जिस व्यवसाय में झूठ बोलना ज्यादा हो, ऐसे प्रकार का हो, जैसे वकालत का धंधा है, तो उसमें झूठ बोलना बहुत पड़ता है। आजकल तो ऐसा बोला जाता है कि जिसको झूठ बोलना में चालाकी हो, सियारी हो, वो वकील बन सकता है। मैंने सच्चे को खोटा बताना, खोटे को सच्चा बताना है। और कानून की भी कोई ऐसी परिस्थिति है कि सीधा सीधा कोई कानून का अनुसरण करे तो चाहे जैसा वकील हो हार जाता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के कानून ऐसे हैं कि जो उनको सीधी उंगली से घी नहीं निकालना देता, निकलता ही नहीं, उसको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, उल्टी सुल्टी बात करनी पड़ती है, तभी वो काम कर सकता है। तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है वो अगर मुमुक्षु है तो उसको छोड़ देना चाहिए। व्यापार में भी ऐसे कई प्रकार के व्यापार होते हैं जिसमें दर्शन मोह के परिणाम तीव्र हो जाए, ऐसे तीव्र हिंसा के व्यापार ने से इंडस्ट्री हो जिसमें बहुत हिंसा होती हो, ऐसे बहुत से हैं, जैसे साबुन का व्यवसाय है, नमक का है, फिर ये ऑयल मिल का है जिसमें क्रशिंग होता है, आटा के मिल का है, और गल्ले का व्यवसाय है, अनाज के में बहुत कम, मानसून में तो उतने जीव होते हैं कि आप देख नहीं सकते, बुरे के बाहर निकल जाते हैं, इतने बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, हवा में मच्छर होते ही अनाज में जानवर पैदा हो ही जाते हैं, ऐसे कई प्रकार के हैं। तो बहुत हिंसा के होते हैं और बहुत हिंसा के होने के बावजूद भी अपना थोड़ा मुनाफा के लिए कठोर परिणाम हो जाते हैं, तो दर्शन हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चारित्र है, चारित्र मुख के परिणाम, लेकिन साथ साथ दर्शन में बढ़ जाएगा। दया के परिणाम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे आजकल हमारे जैनी लोग भी मटन टैलो का बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या कई प्रकार के हैं, लेदर के बिजनेस करते हैं, या लेदर के या मत्स्य उद्योग में जो जाल वगैरह बनाते हैं, गारवारे आदि हैं, इनके अपन शेयर लेते हैं, शेयर खरीदते हैं अपने मुनाफे के लिए। तो क्या शेयर है? वो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है। और क्या है शेयर माने? क्या पार्टनरशिप? तो वो जो काम करता है उसमें हम भी पार्टनरशिप अपनी करते हैं, है? तो अनुमोदना हो गई, इस प्रकार के व्यवसाय की अनुमोदना हो गई तो दर्शन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। है चारित्र मोह के परिणाम, लेकिन इसका कनेक्शन दर्शन मोह के साथ जाता है। तो किस प्रकार के चारित्र मोह के परिणाम के साथ साथ दर्शन मोह बढ़ता है, ये बहुत भयंकर है। चारित्र मोह उतना भयंकर नहीं है, जबकि लोगों को ये लगता है कि ये चोरी करता है, वो करता है, हिंसा करता है, वो करता है, लेकिन इसमें जो दर्शन मोह है वो जीव को बड़ा नुकसान करता है, चारित्र मोह उतना नुकसान नहीं करता है। क्योंकि इसका जो मूल है, दोष का जो मूल है, वो दर्शन मोह का बहुत गहरा है, चारित्र मोह का इतना गहरा नहीं है। इसलिए ज्ञानियों के उपदेश में और अज्ञानियों के उपदेश में अंतर वही है कि अज्ञानी हमेशा चारित्र मोह पर वजन रखता है, जबकि ज्ञानी हमेशा दर्शन मोह पर वजन रखते हैं। और ज्ञानी को पता है कि चारित्र मोह और दर्शन मोह का कनेक्शन कहां होता है, कहां नहीं होता है, वो जानते हैं। कोई फर्क है? उपदेश तो दोनों का दोष मिटाने का होता है, लेकिन दोष में भी कौन सा बड़ा दोष है, कौन सा छोटा दोष है, वो जानकारी ज्ञानियों को होती है, अज्ञानियों को नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी के उपदेश में से जीव जन्म मरण से बचता है, जबकि अज्ञानी के उपदेश से जीव छोटे मोटे दोष से बचते हैं। तो उसका पाप तो कम होता है, पुण्य तो बढ़ता है, लेकिन जन्म मरण नहीं छूटता है, ये फर्क पड़ता है। तो हम गुजराती में तो कहावत है कि खाड़े डूचा ने दरवाजा मोकला। मात्र जो चारित्र मोह के दोष को ही रुकेंगे और दर्शन मोह के दोष कहां कैसा होता है उसका हमको पता नहीं रहेगा, तो खाड़े डूचा ने दरवाजा मोकला थी जैसे कि घर में पानी भर गया, वो पानी आता है तो भाई जो खाल हम क्या बोलते हैं
नाली
नाली,
नाली,
नाली, नाली, नाली नाली को बंद करो, नाली को बंद करो, नाली तो बंद कर दे, दरवाजा खिड़की खुली रखेंगे, यहां से बस ज्यादा पानी आ जाएगा, और जहां उससे कम पानी आता है उसको बंद कर दो। तो जैसा अविवेक है, माना पानी तो ज्यादा घर में भर जाएगा दरवाजा खुला रहने से, उस तरह से ठीक दर्शन मोह को पहले खत्म करो। और ये जैन दर्शन की नीति रही हमेशा। अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में बड़ा अंतर है तो वही है कि कोई भी धर्म पाप करने को दोष करने का अनुमोदन नहीं करता है। कुरान में भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुम किसी को मारो, तुम दारू पियो, तुम झूठ करो, वो करो, पाप करो, ऐसा कुरान में भी नहीं लिखा, बाइबल में भी नहीं लिखा, और कोई धर्म में नहीं लिखा। तो जैन दर्शन में तो सवाल ही नहीं है, लेकिन अंतर क्या है और जैन धर्म का स्तर सबसे अलग है और ऊंचा है, इसका क्या कारण है? क्यों दर्शन मोह को जानता है और उसका मिटाने का इलाज भी वहां है, और जगह वो इलाज नहीं है, क्योंकि इस दोष को कोई जानते नहीं है। अब देखिए, जहां तक तत्व ज्ञान का संबंध है, वेदांत जैसे तत्व ज्ञान की फिलसूफी कोई दर्शन में, जैन दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शन में नहीं है, सबसे ज्यादा वेदांत में और जैन दर्शन में है, बाकी तो सब स्थूल बातें करते हैं। फिर भी वेदांत में सम्यक्त्व मिथ्यात्व की कोई चर्चा नहीं है। तो मिथ्यात्व है वो दर्शन मोह है, और सम्यक्त्व है वो दर्शनों का नाश है। तो सम्यक्त्व मिथ्यात्व की चर्चा वेदांत भी नहीं किया, एक जैन दर्शन में ही है। और वही जन्म मरण का कारण है मिथ्यात्व, क्योंकि इसके साथ अज्ञान अविनाभा भी रहता है, और सम्यक्त्व के साथ सम्यक ज्ञान अविनाभा भी रहता है और सम्यक आचरण अविनाभा भी रहता है, वो जन्म मरण के छूटने का कारण है। ये मोक्ष का मार्ग है, इसलिए जन्म मरण से छुड़ाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
ये तो व्यापार से रिलेटेड बात है। इसे मोक्ष को अपना स्वरूप सामने रख करके कभी कोई छूट का या कोई भी प्रकार का इस तरह का करने का बने तो उसका दर्शन को के साथ क्या संबंध है?
फिर से प्रश्न।
जैसे मोक्ष को अपने स्वहित को सामने रख करके अगर इस तरह का कोई भी वक्र परिणाम या फिर न्याय का
परिणाम झूठ
बोलने का परिणाम करे तो उसका डायरेक्ट
इनडायरेक्ट क्या संबंध है? दर्शनों के साथ संबंध है, और वो मायाचार करता है। प्रश्न वो है
अपने स्वहित को साधने के लिए स्वहित को ही सामने रख करके
साधने के लिए क्यों माया करनी पड़े, क्यों झूठ बोलना पड़े? प्रश्न वो है कि स्वहित को लक्ष्मी लेकर
कुछ है,
है?
अंदर में कुछ है और जैसे आप कह सकते हैं जैसे बैठने का है अगर हमको आधा घंटा बैठने का है, हम बोले हमको 20 मिनट, आपको हम 15 मिनट रखे और हम बैठ के आधा घंटा, पर अंदर में वो है, हमने आपके सामने कुछ और रखा, इस तरह के वक्र परिणाम करें तो उसका संबंध हमारे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे?
उसमें कोई
दर्शन
के साथ संबंध नहीं रहता,
वो हमारा हित के साथ
संबंध
रखता,
उसमें कोई तकलीफ
नहीं। हम अभिप्राय में हमारा हित साधने की बात हो और तब अगर कोई प्रकार का परिणाम,
इसके बजाय हम दूसरा दृष्टांत दे दें, बात साफ हो जाएगी कि एक आदमी जो खुद ही कत्ल खाने का व्यवसाय करता था, वो किसी एक गाय के को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, आगे गाय दौड़ती थी, पीछे वो आदमी दौड़ता था। गाय को मालूम हो गया कि मुझे पकड़ करके मेरा कत्ल कर देगा, वो भागी, वो इसे पीछे दौड़ रहा था। अब कोई चौराया आया और उसने मोड़ ले लिया, और मोड़ ले लिया तो उसका ध्यान नहीं रहा कि किस तरफ वो चली गई, किस गली किस रास्ते पे वो चली गई, पीछे वाला थोड़ा दूर था या दूसरे मोड़ पे था, उन्होंने लो मोड़ ले लिया, एक मोड़ देकर के दूसरा मोड़ उसको गाय को हाथ में आ गया तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई। उस मोड़ पे चौराहे पे एक दूसरा आदमी खड़ा था, जिसने उसको पूछा कि गैया दौड़ती थी वो किधर गए, वो भी इनको पहचानता था, ये तो कत्ल कत्ल खाना वाला आदमी है, गाय के पीछे पड़ा है तो पकड़ करके उसका कत्ल कर देगा। तो वो आदमी झूठ बोला, गाय इधर गई थी उसने बोला कि उधर गई है, इसको गुमराह कर दिया। तो इसको झूठ बोलने से पाप हुआ या पुण्य हुआ बताइए आप? हाँ? क्या हुआ? उसको पुण्य हुआ है, पाप नहीं हुआ है। झूठ बोलने से भी पुण्य होता है।
वो तो ठीक है, पर जैसे मान लो कोई आदमी 10 मिनट के लिए बैठता है और बातचीत में या उसकी कोई चर्चा चल गई, 20 मिनट लग गया कोई साधारण रूप से, वो तो ठीक बात है, लेकिन यदि ये रोज की प्रैक्टिस हो गए,
ये अपना अभिप्राय में ये हो,
2 मिनट का नाम ले और आधा घंटा लगे,
नहीं अपने अभिप्राय में हमको उतना लेना है और हमने टाइम आपको गलत बताया कि हमको इतना चाहिए, हमारे अभिप्राय में अंदर पड़ा हमको आधा घंटा ही लेने का है, फिर हम बात को खींच करके आधा घंटा करके हम हमारा टाइम, तो ये हमारे वक्र परिणाम से हमारे दर्शन मौका क्या संबंध है? रॉन्ग प्रेजेंटेशन हमने किया, आपके समक्ष भी राइट बात को नहीं रखा, अपने अभिप्राय को अन्य कोई मुमुक्षु के सामने रखा हो नहीं रखा वो दूसरी बात है, आपके सामने भी नहीं रखा, तो तो उससे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दर्शन होके तक क्या संबंध है?
उसमें तो क्या है, परिणाम की मलिनता जितनी होती है उतना नुकसान होता है, तो उसका नाप तो परिणाम की मलिनता पर जाता है। उसके परिणाम कितने मलिन हुए, क्योंकि एक और उनको सत्संग की भावना है, एक साइड में उसकी सत्संग की भावना है, दूसरे साइड में कुछ परिस्थिति वशात, कुछ कारणों के वशात वो ऐसा भी कर लेता है, तो मलिनता कितनी आती है और नहीं आती है उस पर वो निर्भर रहता है।
एक दो दिन की बात हो, दूसरी बात की प्रैक्टिस बन जाए तो क्या बात है? दो दिन की बात ठीक है,
प्रैक्टिस
बन जाए
ऐसे
लगे आधा घंटा हम लोग बाहर खड़े रहते हैं तो वो क्या बात है? उसकी प्रैक्टिस किसी की भी बनती है, चाहे मेरी बनती है चाहे एक्स वाई जेड की बनती है, तो वो क्या बात करती है?
प्रैक्टिस क्यों ऐसी बनती है? उसके मूल में जाना पड़ता है, इसके मूल में जाना पड़ता है, उसके मूल में जाकर के उसका जजमेंट लेना पड़ता है।
नहीं वैसे इसमें क्या है? नहीं इसमें वैसे ऐसा ही कि उसको मलिनता का क्या कारण होगा, उसका तो अभिप्राय का वहाँ पोषण हो रहा है, हमको सत्संग चाहिए, हमको हमारा सत्संग मिल रहा है, तो उसमें हमारे को मलिनता आने का क्या कारण बन सकता है? तो मलिनता तो नहीं आएगी क्योंकि हमारा तो
मलिनता नहीं आएगी तो दर्शन में बढ़ेगा नहीं,
तो फिर ये वक्र परिणाम से फिर दर्शन में का क्या संबंध हुआ?
तो मतलब क्या है कि जैसे झूठ, झूठ भी वक्र है, फिर इस आदमी को तो पुण्य हुआ पाप नहीं हुआ, स्थूल दृष्टांत इसलिए लिया हमने कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वक्रता हुआ या झूठ बोला इसलिए नुकसान हुआ ऐसा नहीं है। सभी दोष के पीछे दोष का अभिप्राय को देखना पड़ता है। हम लोग ये चर्चा करते हैं, अपने दोषों की चर्चा करते हैं, दोषों की जब हम चर्चा करते हैं हमारे ग्रुप में, तो हर मुमुक्षु जो है हमारे सामने अपने दोष का निवेदन करता है कि देखो भाई साहब हमको ऐसा ऐसा दोष हमारे परिणाम में होता है, हम कैसे मिटाएं? ये चर्चा चलती है अपने यहाँ, रोजाना चलती है, पर्सनल चर्चा चलती है, मेरे तो ऐसे ऐसे दोष होते हैं और मेरे सुधार करना है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आप उसका इलाज रास्ता बताओ कि हम हमारे दोष को कैसे मिटाएं। तो ये बात तो हुई सरलता के पहले, जब सरलता होती है तब तो ये बात होती है, उतनी तो सरलता आई कि नहीं आई? अच्छा, और मान को भी छोड़ना पड़ता है उसमें, तभी तो दोष का निवेदन हो सकता है। दो बात हुई। अब बात जब ये दोष की चलती है तो हम कहते हैं कि देखो आप जो दोष पकड़ते हो उस स्थूल चारित्र मुंह के दोष को पकड़ करके निवेदन करते हो, अब देखिए कि इसके पीछे आपका अभिप्राय कौन सा रहता है वो बताते जाओ हमको, अकेले दोष नहीं बताओ, दोष के पीछे आपका अभिप्राय क्या है वो भी बताते जाओ, फिर हम बराबर उसकी चर्चा करेंगे।
जैसे सपोज कि अपन ने कहेंगे ये अपने परिणाम के लिए, फिर बैठने गए तो हो गए दूसरों के परिणामों की कथा, और खुद का हमारा प्रयोजन का कोई बात वहां सदा नहीं, तब फिर क्या होगा? तब उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या संबंध
होगा? उसमें तो नुकसान होगा, उसमें नुकसान होगा।
हमने लिया हमारे
दूसरों की कथा करने में, दूसरे के दोष देखने में तो अवश्य अवश्य नुकसान होगा ही, उसमें तो दूसरा कोई मत, दो मत है उसमें, दो राय नहीं है।
अपन कहेंगे और अपन अपने परिणाम के और अपने भूल को निकालने की चर्चा नहीं करके इसके उसके उसके उसकी चर्चा करते हैं, उससे हमारा दर्शन का क्या संबंध?
तो उसमें तो अपना दर्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो सीधी बात है, तो उसमें नुकसान का कारण होगा ही होगा।
ये उसके पीछे ये होते हुआ कि सामने वाले को भाई उसका भूल बता करके उसका निकल जाए, सिर्फ मात्र इतना अगर अभिप्राय से बताने में आता हो तो, क्योंकि बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, एक उसका दोष को दिखाने का अभिप्राय और एक उसकी भूल आप तक पहुंचा के निकालने का अभिप्राय, फिर भी दोनों में है दूसरे की कथा, तो दोनों में किस प्रकार का?
नहीं, उसमें वो आशय हो तो डायरेक्ट उनसे चर्चा करो।
अगर ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि डायरेक्ट बात करने से बात सीधी पड़े तो क्या करना?
तो फिर तो वो तो सीधी पड़ने वाली है ही नहीं किसी से भी। जब अगले को अपना दोष सुनना नहीं है और सुधार करना नहीं है तो आप किसी से भी चर्चा करो, क्या फायदा इससे? किसी से भी इसकी चर्चा करने से क्या फायदा? और दूसरे को सुधार हुए ऐसा हमारा आग्रह तो अच्छा नहीं है।
नहीं, आग्रह नहीं हो, एक सहज विकल्प आकर के छोड़
जाए। सहज विकल्प आता है तो बस उसको शांत करो, उसकी जगह अपना दोष की चर्चा करो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, किन किन की करेंगे हम? जगत में तो बहुत से जीव हैं, किन किन की करेंगे हम? उसमें तो अपना टाइम खराब होगा और अपने अपना प्रयोजन रह जाएगा। इसमें अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं, उनका सुधार हो या उनका बिगाड़ हो किसी एक का, उसमें हमारे पर क्या लेना देना है?
अगर विकल्प का कारण हो तो अपने विकल्प से तो लेना देना था। हमारे को अगर विकल्प का कारण हो तो हमारे को हमारे विकल्प से तो लेना
था। आपको विकल्प का कारण है वो इसके लिए नहीं है,
वो हमारे खुद की कमजोरी
खुद, खुद के कारण से, तो उसको ठीक करो, उसको ठीक करो कि मेरे ये विकल्प शांत नहीं होते, ये मेरा अपराध है और मेरा अपराध मैं कैसे मिटाऊं, ऐसे ले लो। उनको बीच में मत लो, सामने वाले को बीच में क्यों खींचे? बात तो वो है। तो ये जो गुण दोष का भयंकर हिंसा वाला दुष्ट कार्य, इकला दुष्ट कार्य नहीं लिखा, हिंसा वाला दुष्ट कार्य लिखा है। क्यों? कि इससे जीव का परिभ्रमण बढ़ता है, जन्म मरण बढ़ता है और दोष की परंपरा इतनी होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं कर सकते। गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात करते थे इस विषय में कि कोई जीव सैद्धांतिक भूल करते हैं तो उसका दर्शन वो खास करके बढ़ता है। जैसे कि पाप से तो धर्म नहीं होता है लेकिन पुण्य से धर्म होता है, तो ये सैद्धांतिक भूल है। पुण्य से धर्म कभी नहीं होता है, पुण्य पुण्य है तो पुण्य का बंध करता है, पर बंध है वो मोक्ष से विरुद्ध है। बंध और मोक्ष परस्पर प्रतिपक्ष में है, अपोजिशन में। तो जो बंध करता है उसको उससे कोई धर्म या मोक्ष का कारण समझता है या लाभ का कारण आत्मा को समझता है, तो ऐसे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन में, मिथ्या श्रद्धा में अनंत कतलखाना करने का, कतलखाना खोलने का इसके गर्भ में पाप पड़ा है, ऐसे बोलते थे। आज वो पुण्य करता है, उनको उसने पुण्य को अच्छा माना है तो आज तो पुण्य करता है, लेकिन कल वो कत्ल खाना खोल करके बैठेगा। क्यों? लॉजिक देते थे कि पुण्य के साथ उसका फल जुड़ा हुआ है और पुण्य का फल जब जब आता है तो उस फल भोगते समय जीव को नया पाप होता है। पुण्य कभी अकेला किसी को होवे और पाप होवे नहीं, ऐसा संसार में बन नहीं सकता। अकेला पुण्य भाव हुआ करे और पाप भाव होवे नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो पुण्य पाप दोनों बंद है, उसके चक्कर में जो जीव पड़ा है वो संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है, यानी उसको मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। ये विशिष्टता है ज्ञानियों के उपदेश में। तो जो पुण्य के और पाप के चक्कर में पड़े हैं वो आज पाप नहीं करता है तो कल करेगा, और कितना करेगा इसका तो कोई हिसाब है नहीं। जीव के परिणाम का कंट्रोल तो सम्यक ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। देख, सम्यक ज्ञान ही ऐसे भाव है, ऐसे परिणाम है कि जिससे विषय कषाय के दूषित परिणाम पर कंट्रोलिंग करने का एक वाल है, वो कंट्रोल कर देता है। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी में वाल होता है कि भाई चालू रह गया, स्विच ऑन रह गया, लेकिन कुछ हद में ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। ऐसे सम्यक ज्ञान तो कंट्रोलिंग वाल है, वही कंट्रोल कर सकता है दूषित परिणाम। तो उनका उद्देश्य सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए होता है, और मूल में से दोष जाता है और जीव उस मार्ग में चलता है तो परिपूर्ण निर्दोष होकर के जिन पद को, जिनेश्वर के पद को प्राप्त करता है, पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इसलिए उसको जिन मार्ग कहते हैं या उसको जिन धर्म कहते हैं, क्योंकि उसमें उसका विजय प्राप्त होता है। बाकी के वो एक ही प्रकार का, एक हो इतरण काल मां परमारथनो पंथ, वो एक ही प्रकार का है। उसमें दो प्रकार किसी काल में, किसी लोक में नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं है। वो मार्ग पर चलने के लिए दूसरे मार्ग पर हम नहीं चल जाए उसकी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये दो गुण दोष का प्रकरण काफी सूक्ष्म है और उसमें योग्यता चाहिए। सिर्फ बुद्धि लगाने से काम नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि की एक मर्यादा होती है, सीमा होती है, और योग्यता में गहराई का पता चलता है। बुद्धि विशालता को ले जाती है, जब यहाँ तो गहराई का विषय होता है। ज्ञान का क्षेत्र दो प्रकार का है, एक गहराई का भी है और एक विशालता का भी। ज्ञान कितना भी विशाल हो लेकिन अगर उसमें डेप्थ नहीं होती है, गहराई नहीं होती है, तो विशाल ज्ञान काम में नहीं आता, वो इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो जाता है, जानकारी हो जाती है। तो यही ज्ञानियों के संग में जो कुछ लाभ होता है वो डेप्थ का होता है, उसकी गहराई मिलती है। चित्त का लिखने वगैरह में ज्यादा प्रयास हो सकता नहीं है, इसलिए आपको पोस्ट कार्ड लिखा है। ये पत्र जिसको लिखा है वो इसलिए लिखा है कि शुरू से अपना उपयोग नहीं चलता है, इसलिए पोस्ट कार्ड लिख दिया है संक्षेप में, कि हमको जो कुछ लिखना है उसमें आपको लिख दिया है। आपको व्यवसाय में जिसको भी लिखा है पत्र उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको व्यक्तिगत रूप में कहना जरूरी लगा है कि आपका व्यवसाय जो है वो दर्शन मुख का कारण वाला है, आप उसको संक्षेप कर करके छोड़ दीजिए, वरना एक भाव के अल्प सुख के लिए अनंत भाव का अनंत दुख का निबंधन आप कर लेंगे, और ये करने लायक नहीं है। ये पत्र यहां समाप्त होता है, और कौन सा लेना है?
569
बहुत अच्छा पत्र है। स्व विचार बल वर्धमान होने के लिए ये पत्र है, 569 नंबर का जो पत्र है। आगे अपने स्वाध्याय तो हुआ है, पत्र तो बहुत अच्छा है। श्री सौभाग्य भाई के ऊपर लिखा हुआ ये पत्र है। पत्र का हेडिंग है श्री सत्पुरुषों को नमस्कार। किसको नमस्कार किया है? ज्ञानी पुरुषों को नमस्कार किया है। नमस्कार करने योग्य है इसलिए नमस्कार किया है। नमस्कार करने योग्य कौन है? कि जो पवित्र होते हैं वो नमस्कार करने योग्य होते हैं।
ज्ञानी में पवित्रता प्रकट हुई है, क्योंकि धर्म खुद पवित्र परिणाम है, धर्म के परिणाम है वो पवित्रता के परिणाम होते हैं, इसलिए वो नमस्कार के योग्य है। एक बहुत प्रारंभ में ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। यह अध्यात्म का सिद्धांत है। सिद्धांत चार प्रकार का है। एक द्रव्यानुयोग के सिद्धांत होते हैं, वो वस्तु के स्वरूप को दिखाते हैं, द्रव से, गुण से, पर्याय से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस जिसको कहते हैं, पदार्थ का बंधारण क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो प्रतिपादन करने वाला जो कोई सिद्धांत है, ये सब सिद्धांत को द्रव्यानुयोग के सिद्धांत कहते हैं। कर्म और कर्म फल के भोगने की जो भी व्यवस्था है पदार्थ में, उसको करणानुयोग के सिद्धांत कहते हैं। और आचरण संबंधित जो भी नियम नीति सिद्धांत है, उसको चरणानुयोग के सिद्धांत कहते हैं। ये तीनों सिद्धांतों में और उस सिद्धांतों में से कोई निष्कर्ष निकाल करके इसके परे जाते हैं, वो अध्यात्म के सिद्धांत है कि जिस कारण से जीव अपना स्वरूप का आधार अवलंबन लेकर के, आश्रय लेकर के अपने आप को शुद्ध करता है और संसार से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे जो सिद्धांत है वो अध्यात्म के सिद्धांत हैं। और तीनों प्रकार के सिद्धांतों का निष्कर्ष वह है और उसको आगे जाकर के, तीनों में तीनों से आगे जाकर के वही बात कहना है कि जीव अध्यात्म को प्राप्त करे, अध्यात्म स्थान को प्राप्त करके अपना आत्महित कर ले, संसार से छूट करके मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो ये जो यहाँ वचनामृत है कृपालु देव का, वो अध्यात्म के सिद्धांत का है कि अगर किसी जीव को सभी प्रकार के दुख से और क्लेश से मुक्त होना हो तो उसका एक ही उपाय है कि आत्मज्ञान करना। आत्मा का जो मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप का जो अनुभव ज्ञान है, क्योंकि वो अनुभव करने की चीज है, जानने की चीज सिर्फ नहीं है। शास्त्र पढ़ने से आत्मा कैसा है मूल स्वरूप से जान लिया, इसलिए आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे खाद्य पदार्थ खाने की चीज है, देखने की या सुनने की नहीं, या सुनने की चीज नहीं है, वो तो खाने की चीज है, खाने से पेट भरता है, उसकी प्रशंसा सुनने से भी पेट नहीं भरेगा और उनके सामने बैठ करके देखते दर्शन करने से भी पेट नहीं भरेगा, या इसकी वास मिलेगी तो भी पेट भरेगा नहीं कि अच्छी सुगंध आती है, उसको खाने से पेट भरता है। ऐसे आत्मा अनुभव करने से, आत्मा का अनुभव करने से आत्मज्ञान होता है, आत्मा की जानकारी करने से अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता है। ऐसा जो आत्मज्ञान है, आत्मानुभव रूप जो आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान होने से आत्मज्ञानी जो जीव होता है वो सर्व दुख से और सर्व क्लेश से मुक्त हो ही जाता है। विचार बिना अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा आत्मज्ञान होने का कारण क्या है, किस कारण से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? ये प्रश्न का उत्तर वो है कि विचार बिना आत्मज्ञान होता नहीं। विचार माने क्या? कि आत्मकल्याण का विचार, आत्मकल्याण का निर्धार, आत्मकल्याण करना है ऐसा जो दृढ़ निश्चय, ऐसा जिसको होता है उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे को आत्मज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि उसका निश्चय संसार के पदार्थ को प्राप्त करने का हमेशा रहा अनादि से। अपना दुख मिटाने के लिए जीव संसार के पदार्थ प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता है, चाहे वो हिंदुस्तान में जन्म लेता हो, चाहे यूरोप अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, सभी की प्रकृति प्रवृत्ति एक ही प्रकार की है। देवलोक में भी वही बात है कि यहां से सुख मिलेगा, परंतु सुख तो आत्मा में है, सुख कहीं आत्मा के बाहर तो होता नहीं। तो बाहर के पदार्थ के पीछे भ्रांतिगत सुख के लिए जो दौड़ लगाता है जी, तो उसको सुख नहीं मिलता है, सुख के स्थान में दुख ही मिलता है। हाँ, वो निर्दोषता का सम्यक प्रकार से प्रारंभ होता है आत्मज्ञान होने से। पूर्ण निर्दोषता हो गए तो मोक्ष हो जाता है, और पूर्ण निर्दोषता का जो ध्येय निश्चित होता है, निर्धारित होता है, तो मुमुक्षुता का प्रारंभ होता है। जब आत्मज्ञान होता है तो सम्यक प्रकार से दोष का अभाव होने का प्रारंभ होता है, यानी शुरुआत होती है। चतुर्थ गुण स्थान से होता है और यहां से जीव को धर्म की शुरुआत होती है और निर्दोषता की भी शुरुआत होती है। इसलिए यहां कहते हैं कि आत्मज्ञान किसको होता है? सर्व दुख और सर्व क्लेश से मिटाने वाला ऐसा आत्मज्ञान किसको होता है कि जिसको आत्मकल्याण का विचार दृढ़ निश्चय होता है उसको ही होता है, क्योंकि उसका निश्चय बदल गया, उसका अभिप्राय बदल गया। यहां विचार है वो अभिप्राय के स्थान में लेना है। जिसका अभिप्राय आत्मकल्याण का है उसको आत्मज्ञान होता है, जिसका अभिप्राय जगत के पदार्थ को प्राप्त करने का है, यहां से सुख लेने का है, उसको आत्मज्ञान कभी नहीं होता। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा अभिप्राय या आत्मकल्याण का विचार, जिसको आत्मविचार भी कह सकते हैं, वो कैसे उत्पन्न होता है? ये नया एक प्रश्न खड़ा होता है। तो कहते हैं कि सत्संग से ऐसा विचार दृढ़ विचार होता है, बिना सत्संग इस आत्मकल्याण का दृढ़ निश्चय होने का जन्म नहीं होता है। तो यहां प्रतिपादन नेगेटिव साइड से किया है कि और सत्संग और असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवर्तित होता नहीं, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। इसलिए नेगेटिव साइड से नास्ति से प्रतिपादन किया है कि जीव वहां खड़ा है और सत्संग में खड़ा है और असत प्रसंग में भी खड़ा है, तो क्या होता है कि जीव को आत्मकल्याण का विचार तो आता है, लेकिन दृढ़ता नहीं होने से विचार बल नहीं होता है। विचार होना, भावना होना एक बात है, और विचार बल और भावना का बल होना है वो एक दूसरी बात होती है। ऊपर ऊपर से तो ये विचार बहुत से जीव को आता है, हमको भी अनंत बार आया है, लेकिन इसका बल नहीं है हमारे पास, तो ये विचार काम में नहीं आता है। वो तो कहा, और सत्संग और असत प्रसंग से विचार बल नहीं होता है तो सत्संग से होता है, इसका पॉजिटिव साइड वो है। विचार अकेला काम में नहीं आता है, बलवान विचार ही काम में आता है। विचार के साथ विचार का बल चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तो असत्संग छोड़ना चाहिए और असत प्रसंग को, असत प्रसंग को भी छोड़ना चाहिए जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं है कि आप कुटुंब आदि छोड़ करके जंगल में चले जाओ, वो बात नहीं है। प्रारब्ध योग से रहना होगा, लेकिन कैसे बच के रहना ये कला हमें सीखनी है। असत प्रसंग भी हमारे सामने आएंगे, हमारे उदय में आएंगे, क्योंकि हमने संसार के लायक ही परिणाम किए हैं और ऐसे ही कर्म बांधे हैं और वही कर्म का उदय आने वाला है। तो उसको बचने के लिए हमें सत्संग चाहिए। सत्संग से ही, जितना सत्संग अच्छी तरह से यथार्थ रूप से होगा उतना असत्संग मिटेगा और असत प्रसंग से भी दूर हो सकेंगे। और इसका बड़ा उपाय, मोटा उपाय तो वो है कि आरंभ परिग्रह का अल्पत्व कर देना। जितना आरंभ परिग्रह ज्यादा उतना पाप भी ज्यादा, और जितना आरंभ परिग्रह अल्प होगा उतना पाप भी कम होगा, उतनी मलिनता भी कम होगी और उतना सत्संग के प्रसंगों के लिए अवकाश भी ज्यादा रहेगा। वो बात इस पत्र में विशेष रूप से आगे भी कहेंगे, और भी वो बहुत से बहुत अच्छी अच्छी बातें इस पत्र में है। कल के साथ चलिए।